जिसमें ब्रह्मा जी कृष्ण की कुछ लीलाओं का दर्शन किया और उन्होंने स्तुति की, उस लीला का मैं को प्रणाम करता हूँ। वो लीला वो रक्ष कथा हमारी रक्षा कर सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान के उस लीला का स्तवन आरंभ किया ब्रह्मा जी, जो साधकों के लिए बहुत ही अनुकूल है। ब्रह्मा जी हम लोगों के गुरु हैं, संप्रदाय के गुरु हैं। पहले भी इसका कारण हमने बतलाया है, ये क्यों गुरु है। और भी तो लक्ष्मी जी हैं, सनत सनंदन सनत कुमार हैं और रुद्र इत्यादि हैं, भगवत भक्त लोग हैं। पीछे से रामानुजाचार्य इत्यादि भी हुए हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए जो स्तवन किया था उसमें दो एक श्लोकों को आज हम लोग लेंगे और उसमें जो हम लोगों के लिए अनुकूल है उस पर थोड़ा सा विचार करें। उन्होंने कहा ये जो बालक के समान रूप दिखता है, मुख वेश में हाथों में वेणी और नमिल जते अग्रवक्षे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिछल लसन मुखाय वन्य स्रजे कवल नेत्र विषाण वेणी लक्ष्मा श्रिय मधुकते पशुकाम। भगवान के निर्विशेष रूप में किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होती और वो अत्यंत सहज है। जगत नहीं, जगत है इसके ठीक विपरीत, उसमें नाम रूप गुण लीला कुछ है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई चिंता करने की का कोई अवकाश नहीं है। किंतु देखने में नर के समान लीलाएं भी नरलीला के समान, मुग्ध भी उसी के समान, किंतु उसी मुग्धता के अंदर में सर्वज्ञता छिपी रहती है। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए कृष्ण के इसी रूप को, इसी रूप का वो स्तव कर रहे हैं। नौ विघ्न थे अपूर्व कुशल परिदम्बराय, इसकी व्याख्या हमने कुछ दिन पहले भी की है, इसलिए इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अग्र बपुसे नवीन मेघ के समान जिनके श्री अंगों अंग की कांति है और उस पर स्थिर विद्युत के समान उनका पीतांबर लहरा रहा है, गुंजा गुंजा की माला और उनकी पगड़ी में भी अवतंश में भी गुंजा ऐसे अतित ऐसे फिर से रूप में उसकी माला लगी हुई है उनकी पगड़ी में भी और ऊपर में मोर मुकुट है पर उछल लसा है सामने की तरफ में कुछ मयूर कुंज लगा हुआ है। बन्न सृजे बन्य फूलों की मालाएं बेली चमेली जूही इत्यादि की मालाएं सात रंगों की जिसको वैजयंती कहते हैं और लंबी एकदम जो पैर तक कहता है उसको वनमाला। कवल बेत्र विशान रेणु हाथ में कवल बाम हाथ में दस्ति मिश्रित अन्न और बाएं हाथ से उसका कवल देती थी। विशान और रेणु उनको जठर पटयो जठर पटयो यहाँ पर किसी को लगा रखा है कहीं किसी पर लगा रखा है। सखाओं के साथ में दोनों के पीछे पीछे मृदु पदे अत्यंत कोमल चरणों के साथ में बन में चले जा रहे हैं। पशु पंगर जाए जो ग्वाले जैसे दिख पड़ते हैं, ग्वाला के लड़के हैं नंद बाबा के गुरु लड़के। मैं ब्राह्मण हूं ब्रह्मा ब्राह्मणों का भी जगत गुरु हूं। आज मैं उस ग्वाले के लड़के को ग्वालिये को मैं प्रणाम करता हूं। इसकी महिमा जानना बड़ा भारी कठिन है। निर्विकार ब्रह्म इत्यादि की बातें उपनिषद इत्यादि में बहुत कही गई किंतु इस रूप की महिमा सर्वत्र नहीं मिलती, करना भी बड़ा कठिन। इसलिए ये जो हे देव मत अनुग्रहाय स्वेच्छामयस हम पर कृपा करने के लिए भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्तों के कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी इस चीज की अनुभूति कर रहे हैं यह जो रूप बना भगवान का ये किस लिए बना है, किस रूप में प्रकट किया इसको भक्तों पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा पर कृपा करने के लिए। ब्रह्मा रचपथ भी जाए उनको ये स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, अधिक से अधिक गर्भदशाई का ये दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण के इस नर लीला का गोप शिशु का हाथों में बंसी इत्यादि का ये कृष्ण का वो दर्शन वो तो भक्तों पर महान कृपा करने के लिए किसके पर। अभी फिलहाल अभी जो वर्तमान में ये जो अभी जिनका जो भाव है वो तो गौओं पर और रूहा गोपियों पर दया करने के लिए अभी अभी ये रूप धारण किया है, बछड़े बने हैं। इस चीज की अनुभूति करते थे तब उस भाव कर रहे हैं। इसलिए मत अनुग्रहाय स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य को भी निशेमहि प्रवेशितुं मनसांतरेण साक्षात्तयो किमु आत्मसुखं। आपको किसी चीज की तो जरूरत नहीं, केवल मात्र आपके इस अवतरण का कारण इस रूप के जगत में प्रकट करने का कारण भक्तों का विनोद है। हम उसमें मान बैठे ये हमारे ऊपर भी कृपा करने के लिए किया है किंतु यह सरासरी ठीक नहीं है। ये जो आपका बाल गोपाल रूप है इसकी महिमा का था पाना बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी संभव नहीं। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत न दान व्रत तप जप होम स्वाध्याय श्रेय ही इतरे रपी हरि अन्न विडंबन जप तप होम स्वाध्याय पर्यटन ना पर्यटन माने
भ्रमण इत्यादि।
स्वाध्याय तक जब तप स्वाध्याय संयम और पर्यटन तीर्थों में ये सब करना विड़म्बनम भवि, भक्ति के बिना जो कुछ है वो विड़म्बना, वो फल देने वाला नहीं। और भी बतलाया है यद्यपि उन कामों से तप से जप से स्वाध्याय से हाँ? और जो वैराग्य से सन्यास इत्यादि से भगवान कुछ मिलते जाते हैं भी तो ऐसे नहीं मिलते जैसे कि भक्ति के द्वारा हो। तो उसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि आपकी इस महीना को जानना बड़ा भारी कठिन है। ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा तपस्या के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जा सकता है? आपकी कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो कृपा कैसे होगी? ज्ञाने प्रयास जीवन के सर्व फलितानुभव स्थाने स्थिता कर्मानुभवी प्रायशो अधिक जीतो अपित्रय त्रय हो। क्यों? जो तीन लोगों के लिए अजय हो वो ज्ञान के प्रयास के द्वारा जीत लिए जाएंगे। ज्ञान का प्रयास माने क्या? चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध माने क्या? नैति नैति नैति। मायावादियों में अद्वैतवादियों में यही प्रधान चीज है। यह ब्रह्म है नहीं, ये ब्रह्म है नहीं, ये ब्रह्म है ये नहीं, ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है नहीं, ये ब्रह्म है नहीं, ये कुछ नहीं। करते करते अंत तक चले जाते हैं नहीं नहीं नहीं। नौ इति वेद भी जीत के लिए उन सबके प्रयास के द्वारा ज्ञानी प्रयासम उदपाश। इसलिए ज्ञान जप तप स्वाध्याय होम जप सबको छोड़ो, उसके प्रति विश्वास मत करो, तुम्हारे तुमको वो ठग देगा। यहां तक कि भक्ति लोग किए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ईशत अपि अकृत्वा, ज्ञान के लिए प्रयास तनिक भी मत करो। कौन सा ज्ञान? निर्विशेष ज्ञान भक्ति का विरोधी है, इसके लिए नहीं। अरे तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयास मत कर। जो कृष्ण भगवान है वे सच्चिदानंद घन है, पर ब्रह्म है, उनके ही सब ये अवतार हैं, ये सभी छोड़ उसके लिए भी तनिक भी प्रयास मत कर। जो कृष्ण भगवान है तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान भगवत भक्ति का सहायक, ज्ञान कर्म आदि पनापृतक वहां पर बतलाया गया। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए भी तनिक प्रयास मत करो। यहां तक कि तीर्थों में जो परिक्रमा करती हो करते हो उसको भी छोड़ो, उसमें भी नहीं होगा। तीर्थों की परिक्रमा से भी नहीं होगा।
योधिकारी हो तो ये अधिकारी हो जाए सातों मिशन करते
अब ये कह रहे हैं उसमें अपना 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 अधिकार समझ लो, ये किसका अधिकार है क्या है समझा जाएगा। तत्व ज्ञान से कृष्ण का विराट रूप और उनका ऐश्वर्य युक्त नारायण तत्व इत्यादि का कोई आइडिया आ सकती है, किंतु इस बाल गोपाल को तत्व ज्ञान के द्वारा जो ये दधि चोर मक्खन चोर और वन फूल माला से इस प्रकार के घरों में चोरी करता है ये सब निर्लला वो जो भाव है वो नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य बुद्धि उसमें आएगी तत्व ज्ञान के द्वारा।
संबंध ज्ञान की जरूरत नहीं है, संबंध ज्ञान की
कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं,
मुझे संबंध ज्ञान का जरूरत नहीं,
कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। यही तो कारण है कोई चीज की जरूरत, केवल जरूरत है हरि कथा सुनने के द्वारा भी तत्व ज्ञान और संबंध ज्ञान साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति जो कुछ है बस ये हरि कथा के द्वारा ही मिलती है। कोई चीज अलग से प्रयास मत करो। अब इससे बढ़कर के संबंध ज्ञान क्या हो सकता है? यशोदा मैया का यदि चरित्र हम सुनेंगे कृष्ण के साथ में, सखाओं के साथ में संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान का तो चूड़ांत है और तत्व ज्ञान का भी चूड़ा है, चूड़ांत है। उससे बढ़कर के न तो तत्व ज्ञान किसी चीज से होगा अलग से, वो तत्व ज्ञान होगा वाशिष्ठ योग वाशिष्ठ पढ़ने से, न कि क्या चीज में से होगा। इस भागवत की हरि कथा से प्रारंभ से जो सुनेंगे उसमें क्या बाकी रह जाएगा, इसलिए पृथक रूप से कोई करने की चेष्टा नहीं है। हरि कथा का खूब श्रद्धा के साथ में उस श्रद्धा को क्रिएट करने के लिए, श्रद्धा को बतलाने के लिए वो कहते हैं न तक प्रयास होगा, अलग से कोई चीज के लिए प्रयास मत करो। हरि कथा के माध्यम से ही कैसे नमंत एवं जीवंती सम्मुखता भवदीय वार्ता। साधु लोग मौनी होते, संत लोग मौनी होते, इसलिए ग्रामीण ग्राम्य कथाओं को नहीं बोलते। यदि कोई आ जाते हैं तो चुपचाप लगा लेते हैं, वो सब उनसे बातें नहीं करते, उनको उसमें रुचि नहीं है, इसलिए उसको मौनी कहा जाता। किंतु जहां बछड़ा देखा ना, कोई श्रद्धालु व्यक्ति को देखा, सन मुखरितान मुखरित हो जाते हैं, अपने आप वो हरि कथाएं चलने लगती। जैसे परीक्षित महाराज जी को देख करके सुखदेव गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी बिना बछड़ा देखे ही पिन्हा जाते हैं, है कि नहीं? रूप गोस्वामी बछड़ा नहीं रहने पर भी खान में इतना दूध आ जाता है कि अपने आप चिचुआने लगता है, वो चिचुआया हुआ है रस बृहद भगवतामृत और भक्ति रसामृत सिंधु मणि इत्यादि। उस रस का जो पान करना चाहते हैं, सन्मुख रीतान भवदीय वार्ता, आपकी जो लीला कथाएं हैं ऐसे प्रेम से पगे हुए संतों के हृदय में वो क्या होता है, उमड़ने लगता है, उमड़ करके दूध जैसे गिरने लगता है, ऐसे अपने आप जो हरि कथा निकलती है। तस्मिन महन मुखरितान मधुबीष चरित्र पीयूष अशेष श्रमंती गाढ़ करना मैंने क्या बहुत बार बतलाया है, गाढ़ करना सवेरे में झांक रहा था वहां से बैठे हुए चेयर पर, कभी कभी झांक लेता हूँ, अधिक तो नहीं आता, झांक लेता हूँ क्या हरि कथा होती है ये भी सुनता हूँ थोड़ा बहुत, तो झांका तो देखा इसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे किए हुए थे आंख बंद और ऐसे, और कुछ कभी इधर कभी कुछ परसेंट को देखा, देख तो रहे किंतु रुचि नहीं, और कुछ परसेंट को देखा जो बड़ी अच्छी तरह से सुन रहे। और जो कथाएं जगह जगह होती है ना, मसाला साला डाल करके करते हैं, यहाँ पर शुद्ध कथाएं होती हैं इसलिए लोगों को रुचि नहीं होती ना, बालक को समझ सकेंगे नहीं तो नहीं समझ सकेंगे ना? तो इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रयास संबंध उनकी कथाओं को गाढ़ निप करना। गाढ़ निप माने अत्यंत कृषा के साथ, भूख और प्यास के साथ, एक एक शब्द को हम कानों के द्वारा पी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कब तब क्या होगा, उनकी भूख प्यास दुख क्लेश इत्यादि जो कुछ है सब कुछ समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और उसके हृदय के अंदर में तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, संबंध ज्ञान भी हो जाएगा, साधन भक्ति, इसके बाद में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति भी अपने आप उसमें। यदि कुछ भी नहीं किया केवल हरि कथा का श्रवण करते रहे और कथाओं को कथाओं वाचक को वाचकों को उस स्थान को उस ग्रंथ को श्रोताओं को और वक्ता को भी श्रद्धा के साथ में भूमिष्ठ होकर के प्रणाम कर रहे हैं और उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, तो जो जहां पर है वहीं से क्या होगा, वहीं से भगवान को जीत लेगा जो अजीत हैं। और उन्होंने बतलाया वो कि जो लोग चित्त का वृत्ति का निरोध करके बड़ी परिश्रम करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, शास्त्रों का खूब अध्ययन में लगे हुए हैं, उनके द्वारा ये सब होम के द्वारा संयम के द्वारा तीर्थ पर्यटन के लिए भी कहा हरि कथा हो रही है। हमारा रोज का नियम है, हम रोज गोवर्धन का या गिरिराज जी की या वृंदावन की मथुरा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हरि कथा हो रही है यहीं पर ठाकुर जी की परिक्रमा देते हैं, हरि कथा से रुचि नहीं, ठाकुर में कुछ रुचि है, ठाकुर में कुछ रुचि, तो उनके 10-20 जन्मों का फल होगा पीछे तब ये हरि कथा में रुचि आएगी, तब 10-20 जन्मों के बाद में रुचि आएगी कि नहीं हरि कथा में, ये नाम के प्रति रुचि होना हरि कथा के प्रति रुचि होना ये जन्मांतर की सुकृतियों का, ये सब परिक्रमा करना क्या है, सुकृति है, सुकृति को पुष्ट करना, आज जहां पर साक्षात अंग का पालन किया जा रहा हो हरि कथा हो रही है वहां पर सुकृति पुष्ट सुकृति का कितना ऊंचा बड़ा हो जाएगा, किंतु सुनना चाहिए, सुना ही नहीं खूब श्रद्धा के साथ में तब तो परिक्रमा करना ही अच्छा है, नहीं से कुछ अच्छा ही नहीं, किंतु यहां पर ये कह रहे हैं ज्ञानी प्रयास मुखम से नमन देव जीवन समुखरिता भवती अवार्ता, समुखरिता माने सम्यक रूप से मुखरित, बड़े कृपा करके ये कथाओं को कह रहे हैं, उनको साधु भी वैसा होना चाहिए, शुद्ध साधु रसिक और भावुक भी होना चाहिए, यदि वैसा नहीं है तो मध्यम अधिकारी भी कम नहीं, उसके भी लीला कथाओं में से हरि कथा सुना, जो अनर्थ को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है ऐसे भी लोगों को स्थान स्थित, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो त्यागी हो चाहे वो उपकुर्बान हो चाहे नैष्ठिक हो ब्रह्मचारी चाहे वो वानप्रस्थ इत्यादि कोई भी हो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे वो कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई भी हो, यदि निरंतर उस हरि कथा का सेवन करता रहा है तो जो जैसा अधिकारी है उस अधिकार के अनुसार में उसका फल आगे बढ़ता है, और यदि वो श्रद्धालु है और हरि कथा का आदर करता है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी कहते हैं उस स्थान को आकर के पहले प्रणाम करेगा, फिर कथावाचक को प्रणाम करेगा, उस हरि कथा को उद्देश्य कर, ये संसार से उद्धार करने वाली यही एकमात्र कथा है, इसे ही कृष्ण प्रेम हो सकता है और से नहीं, ऐसा बखान करता है, ओह इनकी कथा कैसी सुंदर है, इस प्रकार से कहता है ये स्थान कैसा है यहां पर कि भगवान की लीला कथाओं का यहां पर वर्णन किया जाता है, श्रोताओं को प्रणाम करता है बार बार, ये लोग धन्य हैं जो ऐसी कथाएं सुनते हैं, सबको प्रणाम करता हुआ अथवा अपने वर्ण आश्रम और अपनी अवस्था में जहां कहीं भी हो विवाहित अविवाहित त्यागी गृहस्थ इत्यादि जैसा वहीं से इनका आदर करता है, जीवंती जीवन धारण करता है, भगवान को नहीं मिला केवल जीवन धारण करता है ऐसी क्रियाओं को हरि कथा का सुनता हुआ तो क्या होगा, तो होगा स्थान स्थित श्रुति गता, वो जो कथाएं कान में आई सर्वकृत कथा कहूं मनोवान भी जो प्रायश हो तो उसे उनका आदर करता हुआ केवल करे कथा का ये करता हुआ। तो कुछ दिनों के बाद में अजित भगवान जी भी वो भी प्रसिद्ध हो गया, प्रत्यक्षण हो जाएगा। कैसे क्यों हो जाएंगे? भगवान हरि कथा के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करके उसकी जितनी मलिनता है सबको दूर करके सतकाल की पानी की भांति उसे निर्मल बना और फिर अपने प्रेम को वहां पर उत्पन्न कर दे, सब कुछ उसी के द्वारा हो जाए। इसलिए उस समय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन किया, सब कुछ को छोड़ करके उस समय में हरिनाम करना भी छोड़ दो हरिकथा के समय, नहीं तो सुना नहीं जाएगा, क्योंकि हमसे उन्नत है। या हमसे कोई उन्नत न हो वहां पर हरिनाम करते हुए कुछ कथा सुन सकते हैं, वो बात भी सुनी, किंतु अपने से उन्नत हो और उसमें शिक्षा की बातें हैं तो उस समय में एकाग्रचित्त होकर के कृष्ण प्राणों के साथ कथा का सुनना, उस समय परिक्रमा इत्यादि जावती जो कुछ भी है परिक्रमा करो, कब समय उसमें से निकाल करके करो, तब तो ठीक है। अभी हरिकथा नहीं हो रही, हरिनाम करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज को बचन की वो प्रेम देने वाले हैं, वृंदावन धाम परिक्रमा करने से प्रेम होता है, जमुना जी ने श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम स्तुति स्नान इत्यादि करने से प्रेम होता है, ये श्रद्धा करना चाहिए, किंतु हरिकथा के समय में उसको छोड़ कर। तो वो तीनों लोकों में अजय भगवान को वो जय कर लेता है, जो को जो लोग केवल श्रेय शक्ति भक्ति उद्देश्य थे विभो, हे विभो, विभो माने व्यापक, आपसे बढ़कर के कृष्ण वहां पर व्यापक हैं ना व्याप्य हैं, वहां तो मालूम पड़ता है कि व्याप्य केवल व्यापक के रूप में वहां पर नहीं है। तो अभी वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी में ही व्याप्य और व्यापक सब कुछ जो कुछ है सब इसी के अंदर, मायावादी लोग कहते हैं कि एक साथ में व्याप्य और व्यापक नहीं होता, वो केवल व्यापक है, व्याप्य माने उनके अंदर में कुछ व्याप्य ये नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं यहां वो लोग केवल जो परिश्रम करते हैं बोध लब्धये ब्रह्म के बोध के लिए, या मैं ही आत्मा ही ब्रह्म हूं इसके बोध के लिए जो प्रयास करते हैं ज्ञान इत्यादि के लिए, उनके लिए केवल वो बोध लाभ करने का जो प्रयास, केवल प्रयास ही लाभ होता है, क्लेश ही उनको होता है। जैसे भूसे को 100,000 वर्ष तक कूटने में कोई अन्न नहीं मिलेगा, ऐसे ही ये प्रयास करते 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 रथ पच जाएंगे, उससे तत्व ज्ञान भी नहीं होगा, भगवान का ज्ञान भी नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं होगा, न मुक्ति होगी न कुछ होगा इसके ऊपर। इसलिए कहते हैं समय बर्बाद मत करो, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो पूजां देवा संविता तद्वात् बभि पिद्धं नमस्ते जो जीवेन
जो मुक्ति पदे सदाय।
इसलिए तुम अपने सुख और दुख में ही नहीं लग जाओ, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास और दुख को दूर करने के प्रयास में ही मत लगो, जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें मत लगो, समय बेकार जाएगा। इसलिए सब समय अपने सुख को ही आ गया तो सोचे जी भगवान की बड़ी अनुकंपा है, इतराव मत उसमें, भगवान की कृपा अनुकंपा उसे मान ले, भगवान के कृपा से किया कुछ प्रतिष्ठा मिली, सोचो ये गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा से उनके चरणों में ही उसको उनका निवेदन कर दो, अपने पास मत रखो तब तुम लोग मरोगे। और यदि कोई सुख आया तो उसको भी प्रभु की कृपा मान करके उसको ग्रहण करो, सुख और दुख के लिए प्रयास मत करो, जो दुख को दूर करने के लिए प्रयास हो सत्य अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एव आत्म कृतम विपाक, ये जो विपाक विपत्तियां आई हैं क्लेश जो आए हैं वो किस लिए आई, एव आत्म कृतम, मैंने जो पूर्व जन्म इस जन्म मैंने जो किया उसका फल आया, और भी आया है भगवान की कृपा से। जैसे जमलाजी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभो हमारे ऊपर में ये विपत्ति आई थी, अब हम लोगों ने समझा लिया, नारद ऋषि की बड़ी अनुकंपा थी, और उसमें नारद ऋषि की बात को पूरा करने के लिए सत्याभिधा तुमने जो भक्त भाषित, ये आपकी अब जो कृपा हुई, ये कृपा कैसे हो गई हमारी, इसको वो विचार करते हैं, विचार करके गदगद हो जाते हैं। जो विपत्ति विपत्ति नहीं थी हमारे लिए, परम कल्याण का ये बात है। इसी तरह से अपने जितने भी दुख हैं वो आएंगे, तुम उसको आनंद से उसको भोग करो या मरते 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 दुख भोग करो, वो आएंगे जरूर, विपत्ति आएंगे, मरण भी आएगा जरूर, वृद्धावस्था की जितने कष्ट हैं ये भी आएंगे, मान अपमान सब आएगा, उसको भगवान की अनुकंपा मान कर अब उसको सहलो, भुंजान के आत्मकृतम हृदवाक बपु भी विदधन नमस्ते। हरित बाक बपु भी, बपु भी मैंने साष्टांग प्रणाम इत्यादि के द्वारा, और बाक मैंने वाणी के द्वारा उनका महिमा का गान करते हुए हृदय के अंत करने से पुनः पुनः उनको नमस्कार करो। किसको? प्रभु को नमस्कार, उनकी कथाओं का नमस्कार करो जो पहले बताया। ऐसा जो जीवित रहता है और समझता कि भजन हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं जाता, केवल बस उसका जीवित रहना ही और हरि कथा का श्रवण करना ही भगवान और भक्तों के लिए नमस्कार ही उसके लिए साधन हो जाता है, फिर वो मुक्ति पदे, मुक्ति जस्य पदे अर्थात भक्ति, भक्ति के पद में ही प्रारंभ अवस्था में ही अनुसंगिक फल मुक्ति इत्यादि है। ऐसे प्रेमा भक्ति में उसका दाय भाग हो जाता है, अधिकारी बन जाता है। अभी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी हम भजन कर रहे हैं, सोचते हैं अभी जो हरिनाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? अरे हमारा जो धन था वो भी तो पहले जैसा बढ़ा नहीं, हमारी जो प्रतिष्ठा थी वो भी नहीं आई, हरि भजन करते और कहते देते जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो गया, तो उसका हो जाए, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, या कोई भी प्रभाव दिखता नहीं हरि भजन से, इसको भी भगवान की बहुत कृपा और भक्ति की कृपा से जो ऐसा प्रभाव नहीं आ रहा, नहीं तो आने से भक्ति उसी समय में विदा हो जाए। भगवान न करें कि ये सब सिद्धियां आ जाए, जिनको आ जाते हैं जो समर्थ हो जाता है उसको तो भगवान दे देते, तो इसका प्रयोग नहीं करें, और हम लोग इसके बात बात में प्रयोग करेंगे भक्ति हो जाएगी, इसलिए कहते हैं कि वह प्रेम भी उसको हो जाता है। कब हो जाता है, कब हो गया उसको पता ही नहीं चलेगा, बस उसका जीवित रहना माने ये हरि कथा सुनना, भगवान को प्रणाम करना, भक्तों को प्रणाम करना, भगवान नाम करना, बस जहां जो है बस यही करना, जो हो गया हो गया, गृहस्थ आश्रम में वही रहे, त्यागी जो अनुकूल हो भजन के बस उसको ग्रहण करके वही भक्ति में गाय भाग हो जाओ, पुत्राधिकार। जैसे किसी को पुत्र हुआ, पुत्र का जीवित रहना ही पिता की संपत्ति में अधिकार का द्योतक है, और पुत्र यदि मर गया बीच में तो खत्म हो गया, उसी तरह से ये भक्ति पूर्वक आचरण करना ही हृदय बाप और बपू के द्वारा भगवान और भगवान की कथाओं का भगवान नाम इत्यादि का तीर्थों का प्रणाम करता है, बस इसी से भक्ति हो जाएगी और मुक्ति पद में अर्थात भक्ति पद में उसकी स्थिति हो जाएगी। देवभतम द्वय प्रसाद देशानुग्रहित जनाति तत्पन भगवान महिमनो न चन्न एक चिरम विचन्न। कोई व्यक्ति अपनी प्रचेष्टाओं से वेद उपनिषद का अध्ययन करता है और उसके अनुसार में साधन करता है, त्याग व्रत होम स्वाध्याय जप इत्यादि का प्रयोग करता है, बहुत जन्म जन्मांतरों से फिर जान करके भगवान आपकी ये जो महिमा है इस रूप में
कोई नहीं जान सकता है। अथ अति ते देव पदांग गुजर वय प्रसाद ले शाम, यदि कोई जानेगा तो कैसे जानेगा, आपके चरण दोनों कमलों की कृपा से ही कोई जान सकता है, लेश भी उनकी कृपा हो जाए चरणों की। पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेश अनुग्रहित, उसके द्वारा यदि कोई अनुग्रहित हो गया, अथवा पदाम्बुज द्वय उनके जो चरण कमल हैं उनकी सेवा करने वाले जो भक्तजन हैं उनकी यदि कृपा हो जाए, अनुग्रह उनका हो जाए, तो ही जना के तत्व भगवान महिमा, भगवान की ये जो महिमा, क्या महिमा अभी जो दिखलाई देखा, क्या पहले कृष्ण मुग्ध होकर के घूम रहे हैं बछड़ों को बालों को ढूंढ, थोड़ी देर के बाद में देखा चतुर्भुज नारायण सपन और आत्म्ब स्तंभ ब्रह्म तक सब लोग उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं, पीछे से देखा वो भी चला गया और देखा फिर अबोध की भांति कृष्ण बछड़ों और उनको खोल, और देखा क्या ये सब कृष्ण ही बने हुए गो बछड़े हैं और बछड़े और सब माताओं के पास में जा रहे हैं प्रतिदिन की उनकी लीला, और यहां तक कि बलदेव जी की नहीं समझ, ये सब उनको अनुभव किया उन्होंने, तो वही कह रहे हैं ये जो भगवान की महिमा है इसको जानना बड़ा भारी कठिन है, कोई भूमि की मट्टी के कणों को गिन सके, आकाश में ताराओं को गिन सके, और कुआसा होता है उसके कणों को भले ही कोई गिन सके, किंतु भगवान की महिमा को जानना बड़ा भारी कठिन है, किंतु जान सकता है कोई, कौन जानेगा, जनाति तप्तं भगवान महिमनो पदाम भुजदय प्रसाद लेशान रूप रही थे, भगवान की कृपा से और भक्तों की अहित की कृपा से ही कोई समझ, विशेष करके प्रेम लक्षण जो रागानुगा भक्ति होती है उसमें भक्तों की कृपा के अनुगत्य में भगवत कृपा जो होती है उसी के द्वारा, जब तक कि भगवान भक्तों से भक्त भगवान के लिए प्रार्थना नहीं करेगा जी इस पर कृपा करना है आप, तब तो भगवान आनंदमय है, आत्माराम है, आप तो काम है, वो जीव पर कृपा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई चीर काल तक तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करके भी और भक्ति के अतिरिक्त जितनी भी चेष्टाएं वो करके भी कुछ भी बोला श्रम ही मत, किंतु तस्तुमेना सपूरी भागो भवे अत्यवा तू आश्चिश्यम जेना हम एको अभी बहुत जना भुगतान से बेहतर भाव, इसलिए मेरी अभिलाषा यही है बहुत अस्तु, इसलिए प्रभु इसी के लोभ से तत्ते अनुकंपा और इत्यादि, और ये जो आपकी कृपा के बिना ये हो नहीं सकता, इसलिए आपकी कृपा को और भक्तों के कृपा को पाने के लिए मैं नाथ सभूरी भागो भवे अत्र वा अन्यत्र, कहीं अत्र माने इस वृंदावन में, अत्र माने इस ब्रह्म जन्म में, इसके लिए विकार इस जन्म में, अथवा कहीं घास तीर्ण गुलमा पशु पक्षी त्रियक योनि इत्यादि में कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, और आपका कोई भक्त हो करके भक्तों में से कोई भक्त के रूप में जन्म लेकर या उनके संग में मेरा जन्म हो जाए और तब आपके चरण कमलों का निषेवन करूं, जेनाम अहम एको अपि भवत जनानम, आपके जनों का एक हो जाऊं, अथवा आपके भक्त जनों में से कोई एक तो हो जाऊं, इसलिए आपकी कृपा को लाभ कर दो बातें कर, एक है कि आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तों में से कोई एक हो जाऊं, अथवा भक्तों का संग पाने के लिए ऐसा कुछ हो जाऊं त्रिजग योनि में या मनुष्य योनि में या इस ब्रह्म योनि में कहीं भी, तो भक्तों का संग हो जाए और उनके संग में हरि कथा हो जाए, आपकी कृपा की अनुभूति कर सकूं और उनकी कृपा से सही रूप में आपकी इस महिमा को जान सकता हूं जो इस महिमा को अभी तक नहीं जान सका, तो भवत जनानं बहुत जना भूतानी से पाद पद आपके चरण कमलों की सेवा बहुत धन्यवाद। अब कहते हैं कि आपके भक्तों में अत्र होना तो बड़ा भारी मुश्किल, अन्यत्र ये कभी हो सकता है, किंतु वो होना भी बड़ा कठिन है। इसलिए लालसा तो उनकी लगी है अभी जो लीला देखी है उसके लिए। अभी लीला क्या देखी, कृष्ण बछड़े और ग्वाल बाल बनकर उन कोटि कोटि माताओं की और गऊओं की इच्छा को पूर्ण कर दिया है। अब हमारे अंदर में भी यही अल्लाह साहब कि मैं वैसे ही गौआ बन जाता या उन माताओं में से कोई एक माता बन जाता और कृष्ण को अपने स्तन से दूध पिलाता या ऐसे कोई भी सेवा मैं कर सकता, मेरा जीवन पूर्ण हो जाता। किंतु अभिलाषा भीतर में उठने पर भी देखा जाए यह असंभव है, इसीलिए केवल उनकी महिमा बतलाया। ओहो कि धन्य ब्रज गो रमण्य, ब्रज की गो और रमणिया धन्य है। स्तन्या मृतम पीतम अतीव थे मुदा, बड़े प्रसन्न होकर के उनके स्तन से जो अमृत निकला उसका उन्होंने बड़ी उत्कंठा के साथ में, बड़ी क्रुद्धा के साथ में प्रेम पूर्वक पान किया। कृष्ण जासाम विभो हे विभो, जिनको विभु जानकर जिनकी तृप्ति के लिए आज तक भी न चारम धरा कोटि कोटि यज्ञ करके भी और यज्ञों के बाद में अभ्युत्थान इत्यादि करके स्तौ स्तुतियां करके भी आज तक उनकी कृपा को नहीं पा सके, किंतु इन गयों ने और बछड़ों ने विभो बस्तरा आत्म आत्म आत्मजात बना, उनके पुत्र बनकर और उनके बछड़े बनकर के इतनी ललक के साथ में उनका दूध पिया, वो सोमरस उनको प्रदान किया, स्तौ स्तुति की, कोटि कोटि यज्ञ उनके लिए किए, उसके द्वारा नहीं होगा, इसके द्वारा होगा ये जो भी जो बताया उनकी कृपा से, और उनकी कृपा कथा श्रवण नाम इत्यादि के द्वारा सहज रूप में यही पद्धति है। और अपना जो प्रयास है हरि कथा हरि नाम भक्तों की चरण की सेवा उनका संग छोड़ करके और कोई भी करने की इच्छा इससे वो ठग जाएगा, उसे वो काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जासम विभो हे विभो, जिसके द्वारा उनके प्रेम में बसी हुई होकर के आप बछड़े और उनके लड़के बनकर के जो अत्यंत प्रेम से भूख के साथ में आपने जो पान किया और उसमें जो आप आनंदित हुए, वो आज तक भी बड़े बड़े योगी लोग यज्ञ इत्यादि कर करके अर्थ इत्यादि के द्वारा भी यज्ञ माने यहाँ तपस्या इत्यादि सभी ले लिए, होम स्वाध्याय जप तप सब कुछ इसमें ले लिया, उसके द्वारा आज भी वो प्रसन्न नहीं भगवान को कर सके। इसलिए उनकी केवल प्रार्थना की, उसमें जन्म लेने की भावना नहीं आई, यदि जन्म हो जाए बहुत अच्छा, किंतु हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, कोई सुकृति भी नहीं हुई, उनकी कैसी आराधना ने भी नहीं की, गायों ने जैसे पूर्व अपने पूर्व पूर्व जन्म में और गोपियों ने जैसे आराधना की, आराधना से ऐसा फल मिल जाएगा, आराधना के द्वारा ऐसा फल मिलना बड़ा था, वो तो उनके परिकर नहीं है और मिल भी सकती है यदि उनकी कोई ऐसे ही सेवा करे तो मिल भी सकती है वैसे, किंतु वैसे प्रेम के साथ भी यदि हो तो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हमने तो क्या किया, भगवान की सेवा में मैंने बाधा डाली, उनको क्रोधित कर दिया, उनको बीच में ही लीला का भंग कर दिया, एक बरस तक जो लीला चलने वाली थी उसको बीच में भंग करके हमने उसमें लगा दिया। ओ भाग्यम महो भाग्यम नंद गोपाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म ओहो ओ अहो अहो करने लग गए क्या, ओ भाग्यम अहो भाग्यम बड़े आनंदित हो उठे, ओहो नंद गोप प्रजौ अरे इन गाय और रमणियों की तो बात क्या कहें, इनका तो दूध ही पिया और कितना दिन तक पिया, एक वर्ष तक पिया। उस ब्रज में जो लोग भी रहते हैं ना, पशु पक्षी कीट पतंग वो और सब जितने रहते हैं जिनका दूध नहीं भी पान किया, अंतिष्ठ बहिष्ठ जो कुछ भी उस वहां पर ब्रज में जो रहने वाले हैं वास करने वाले सबके लिए करें, ओहो भाग्यम बहुगा, कितना उनका सौभाग्य है कि जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सना, जिनके वो मित्र हैं, किनके सबके ही मित्र, गोपों के मित्र हैं, गोपियों के मित्र हैं, वहां के बछड़ों के मित्र हैं, सखाओं के सबके ही वो मित्र हैं। यहां पर मित्र माने क्या, मित्र माने यहां पर सौहार्द भाव। इस सौभाग सौहार्द भाव को चार भाग में विभक्त करो, दास सख वासल, ब्रज में शांत रस की स्थिति नहीं के बराबर, वो प्रकट नहीं है, इसलिए इनको एक एक तरफ से आगे एक एक स्टेप मानना पड़ेगा। दास से पहले सख भी वासल्य भी मधुर भी। जन्मित्रम परमानंद परमानंदम, जो परमानंद वेदों के जो प्रतिपाद्य हैं, वेदैश वेदैश सर्वे एवमित्यः, वेदों में वही वही एक जानने योग्य हैं, वेद जिनकी आराधना करती हैं करते हैं, वो जो परमानंद पूर्ण ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम एम ब्रह्म इत्यादि, जो पूर्ण ब्रह्म जो सनातन पूर्व आज इनके मित्र बने। ऋषि के चषक अशक्य पिवा, हम तो यही लालसा करते हैं कि जेता लोग जो हैं मनुष्य के शरीर में या प्राणियों के शरीर में एक एक इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बन जाए, तो हम लोग अधिष्ठात्र देवता के रूप में ही हम लोग बहुत बहुत कुछ हो गया हमारा सौभाग्य, उनके अंदर में प्रविष्ट होकर के हाथ का अधिष्ठात्री देवता बन जाए, नाक का आंख का कान का जितने हमारी इंद्रियां हैं मन का ये सब अधिष्ठात्री देवता बन करके, और चषकई चषकई माने भक्तों का जो मुख भक्तों का नेत्र भक्तों का जो इंद्रिय उसके चषक के द्वारा प्यालों के द्वारा भर भर करके पान कर, चषक खुद नहीं बनना चाहते, चषक क्या है
प्याला,
भक्तों का अंग श्री अंग, जब भक्त आंखों से दर्शन करता है तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे,
दर्शन
आंखों के माध्यम से, इंद्र किसी के अधिष्ठात्री देवता है, वरुण किसी के अधिष्ठात्री है, शरीर में जो जल है ने? मन का अधिष्ठात्री कौन है, चंद्र है, ऐसे ऐसे
हाथ के इंद्र,
इसके हैं सूर्य,
नाक के अश्विनी कुमार द्वय,
नाक के अश्विनी कुमार द्वय, कान के
पवन
वायु है, ब्रह्मा जी किसके हैं, मन के शायद हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बनकर और उनके माध्यम से कृष्ण के रूप नाम गुण लीला इत्यादि को प्याले में भर भर कर, प्याले में मैंने उनकी इंद्रियों को प्याला बनाया और उसे भर भर करके हम पान करें। पिवामा ओ एक बात मैं कहना भूल गया, कहते हैं ब्रह्मा इस सबकी हमने महिमा वर्णन की किंतु हृदय के अंतरतम में एक बात हमने देखा, हमने देखा यही कि कृष्ण सखाओं के लिए प्रौढ़ गोपों के लिए गायों के लिए और भक्तों की इच्छा के लिए नहीं जगत है, कृष्ण किसके लिए आए, एकमात्र गोपियों के गोप्रमणियों के प्रेम के आस्वादन को ही करने के लिए कृष्ण आए, इसलिए उनका कितना भाग्य है, तो यहां पर तो बतलाया अहो भाग्यम न हो भाग्यम, और यहां पर कहा तद भूरी भाग्य, वहां पर तो अहो भाग्य कर दिया सबके लिए, किंतु अब स्पेशल रूप में जिनके प्रति कृष्ण आकृष्ट होकर के इस जगत में आकर के रसास्वादन कर रहे हैं, जिनके लिए अपनी मैया का दूध पीना छोड़ दिया, पलंग पर लेटे हुए अपनी मैया का दूध पान कर रहे हैं, कोई गोपी उधर से निकल रही है और कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, गैयों से लग रहे हैं, सखा लोगों के साथ में खेल रहे हैं, जहां किसी वृंदा को देखा दूर से जाते हुए और उन्होंने इशारा किया तो दूध पीना, सखाओं के साथ में खेलना, जिनके लिए अभी तक जन्मित्रम कह रहे थे उन सबको भी भूल जाते हैं और बहाना बनाकर मिलने के लिए कुसुम सरोवर इत्यादि में प्रवेश कर जाते हैं। वो उसके लिए तद भूरी भक्त गमी हम जन्म किम पटव्यम जज गोकुले भी किंतु नाम नहीं लिया। जहां कहीं भी इस ब्रज में जिस किसी का भी चरणों की धूली हमारे ऊपर में पड़ जाए किंतु उसी के लिए तदभूरी भाग्य कह रहे हैं। कृष्ण यहां पर कह रहे हैं तुम करे उनकी चरण धूली के लेने के लिए है प्रभु। हम कहीं भी गोकुले भी गोकुल में भी, इसका अर्थ क्या हुआ गोकुल में भी, यदि आप मुझे दूध भी पिला दें, दूध भी माने यदि पानी भी हो गया तो कोई हर्ज नहीं, अरे दूध भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, दूध ना मिले तो पानी टानी जो कुछ भी मिल जाए, चीनी घोल दो, कोई भी चीज मिल जाए। तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं किम अटव्यम, अटवी की तो बात ही क्या, अटी ने होना कोई साधारण का। कृष्ण कह रहे हैं अरे ब्रह्मा जी आप तो चतुर्वेद के ज्ञानी हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, सबके पितामह हैं, जगत के गुरु हैं, और मैं जूठा खाता फिर रहा इधर में चल रहा हूं, ग्वालियर का लड़का, स्नान करता कि नहीं करता, जूठा हाथ अभी रोटी खा रहा था कवल लेकर के चल रहा है, कोई आदमी चलता फिरता ब्राह्मण का लड़का घूमता हुआ खाएगा? मठ में भी हम लोग देखते हैं तो कोई थाली हाथ पर ले लिया या खा लिया या रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर के चलता है, हम कहते हैं अरे बैठ कर खाओ इधर उधर घूम रहा है, डांट देते हैं। तो कहां हम ग्वालिया जूठे खा रहे हैं, दूसरों का जूठा ले रहे हैं और इधर उधर बन में डोलते हुए हाथ भी धोने का समय नहीं, इतने में गैया को बुलाने के लिए चलना पड़ा, कोई सखा से ऐसे ही भीड़ गए, रोटी खा रहे हैं और भीड़ गए, वो रोटी छीनने लगा, उसको भी अपवित्र किया, अपनी भी अपवित्र, शरीर में सब तो लग गया, शरीर में ही खा लिया ऐसे लगा दिया बस। हम लोग कहीं जाम उठो 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 अभी कपड़ा धो। और ऐसे हमारे ग्वालियर के प्रति और आप स्तव स्तुति करके उनकी चरण धूलि में स्नात होने के लिए जो कोई भी जन्म लेना चाहते हैं ये क्या? अरे प्रभु वो तो वो उससे कहिए जो आपकी महिमा को नहीं जानता है, मैं तो ये कहता हूं तद भूरी भाग्य, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा तो ये बात कहो कि तू ब्रज में जन्म लेना चाहता है, अटप्या अटप्या माने
वृंदावन
अटवी में वो कहा ना
अटवी
वो एक श्लोक है कि राधा जी के जिसका छुपा नहीं है, अनाराधितो
अनाराध्य राधा
अनाराध्य राधा पदम भोजनेणु
अनाशित वृंदावन कवि
अटवी। वृंदावन की जिन्होंने सेवा नहीं की उन लोगों के लिए श्याम सिंधु में अवगाहन करना कभी भी संभव पर नहीं हो सकता, उसी के लिए यहां पर अटवी इस प्रेममय वृंदा अटवी में जहां पर कि आपकी ये सब लीलाएं हो रही हैं, मेरी उन प्रत्याशियों में तुम जन्म लेना चाहता है, कौन सी तपस्या तुमने की, अहंकार तो तुम्हें है, पहले तो वैसे कहा अब कहे तुम्हें अहंकार हो गया, मैं ब्राह्मण हूं चारों वेद का ज्ञाता हूं जगत का गुरु, तो तुमने किंतु ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे कि तुम वृंदावन में तुम जन्म लेगा, ये संभव बात नहीं। हम लोग जितने हैं सबका वृंदावन में जन्म हो जाएगा, वृंदावन में होने से ही उसमें अधिकार आ जाएगा, उसकी लीला में अधिकार होना तो बहुत बड़ी बड़ी बात। धाम के प्रति श्रद्धा ही नहीं। अभी यहाँ पर हम हैं, करौली जाने के लिए इतना मचल रहे हैं जो करौली जाए, कैला देवी का दर्शन करने के लिए मचल रहे। अधिकांश लोग मथुरा वासी, अधिकांश लोग कृष्ण की और ब्रजभूमि में जन्म लेकर के दुर्भागा। वो कैसा दुर्भागा, अपनी माता से जन्म लेकर के शुक्री की वंदना करने वाला, गंगा से निकट रह करके गर्दभ के मूत्र में स्नान करने वाला, उसके लिए लालाई, माता को छोड़कर के शपची की वंदना करने वाला वो व्यक्ति, और खारी कुएं के निकट गंगा के निकट निवास करके भी, जमुना के किनारे निवास करके भी, खारी जल वाले
कुपम बांचन की दुर्भागा,
कुप के पानी के लिए हम तो वही पानी पिए, और कोई किसी का छुआ छुआ, नल का पानी, गंगा का पानी, जमुना का पानी, जिसमें कि ये गंदी नालाएं भी है, ऐसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि सदभूरी भाग गमी हम जन्म किम अटक बैम, मेरा आठवीं में वृंदावन में जन्म हो जाए, नहीं तुमने ऐसा कोई भी सौभाग्य नहीं किया, वृंदावन में ऐसे ही जन्म हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए यदि वृंदावन की आराधना की, कृष्ण जैसा की, और कोटि कोटि जन्म जैसे श्रुतियों ने की, वृंदावन की लताओं को बनने के लिए वेद की एक एक ऋचा और ये गाभियां कितनी तपस्या की, कोटि कोटि जन्म तो का आराधना की, तब ये गोपियां बनी, ये साझी नहीं ऐसा हुआ है। तो इसलिए वृंदावन में तो तुम्हारा जन्म होना असंभव है, नहीं होगा। तो कहते हैं जज गोकुल, कहीं गोकुल में भी कहीं भी हो जाए, गोकुल माने वृंदावन में रासलीला इत्यादि है, गोपियों की प्रधानता है, कौन गोपी, गोप्रमणियों की, किशोरियों की, यहां पर तो तुम्हारा नहीं होगा। तब कहां हो जाए, गोकुल भी, गोकुल में भी, तो तुमने वहां पर कौन सी तपस्या की, प्रभु हम तपस्या को जाएंगे, हम तो वहां हड्डी कुल में भी मेरा जन्म, हड्डियां जो हड्डी मेला कमाने वाली हैं, वो जब चलती हैं तो घास जो दब जाती है, अथवा जो पत्थर पर पैर रगड़ती हैं, पानी धोती हैं, टट्टी कमा करके आई और पैरों को रगड़ करके धोना आरंभ कर दिया, पानी देकर वो पत्थर की शिला भी मैं बन जाऊं, या उनके चरणों से कहीं भी मुझे स्पर्श हो जाए, ऐसे हड्डी कुल की चरण की धूली को पाने के लिए घास गोकुल में भी बन जाए, अथवा अन्यत्र यदि ये ना हो तो कहीं भी हो जाए, स्पेशल किसी के लिए नहीं कही, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, गोकुल की कतमांगरी रजो विषय, किसी का भी चरण धूली पड़ जाए, जीवितम गुरु, क्यों, इसलिए कि आप उनके जीवन स्वरूप हैं, किनके, ब्रजवासियों, जितने कहा ना ब्रजवासी गोप गोपी गोप गो वत्स, वहां के तृण लता गुलमा, सबके आप प्राण स्वरूप, यदि एक दिन कृष्ण वन में न जाएं और लताओं पर अपना हाथ देकर के और एक पुष्प चयन न करें, लताएं कुंभला करके नीचे, यदि कृष्ण ने छू दिया तो क्या हुआ,
प्रफुल्लित हो,
मूर्खाएं भी प्रफुल्लित, वृक्ष इत्यादि भी ऐसे ही उनकी दशा हो जाएगी, निखिलम उनके सर्वस्व हैं, निखिल माने प्राण स्वरूप हैं, मुकुंद मुकुंद माने तीन अर्थ लगाया विश्वनाथ जी, मुकुंद मुक्ति
ददाति,
मुक्ति ददाति की मुकुंद, और दूसरे अर्थ होगा मुक्ति सुखम कुकुशतं कृत्वा प्रेमानंदम ददाति, प्रेम को तो देने वाले, मुक्ति को भी अत्यंत घृणित करते हैं, गोपियों को इस प्रेम की भी जरूरत है, तो प्रेम की तो मूर्ति नहीं बल्कि महाभाव की मूर्ति है, इसलिए इनको प्रेम की भी जरूरत नहीं, वो तो स्वाभाविक इनके रख रख में है, इसलिए वो कहते हैं कुंद के समान
मुखम
सब समय प्रस्फुटित हुआ रहता है गोपियों को देख करके, वृंदावन को देख करके, सेवा पाकर। वो वैसे ही मुकुंद जो है तद्यापि जब पतरज श्रुति में गम्य वेद श्रुति ये सब जिनके दर्शन के लिए आज भी ललचते हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको ये चीजें नहीं मिलती, कृष्ण उनके जीवन स्वरूप नहीं हो जाते। आज जिनके ये जीवन स्वरूप है, प्राण धन है कृष्ण, किनके
इन ब्रजवासियों को,
उनके चरण कमलों की कभी शुद्धि बन जाओ, इसके लिए प्रार्थना। मेरी बुद्धि चकरा जाती है कि जिन असुरों को अभासुर पकासुर और पुतना को आपने बिना कुछ आराधना किए ही रुधिर पान करने वाली और
पुतना बाल खाते नहीं,
बाल खाते राक्षसी है, सदवेश केवल बनाया और उसको आपने खात उचित गति दे दी, तो जो प्रेम के साथ में आपको दूध पिलाया, जो प्रेम के साथ में आपका लालन पालन सेवा किया, उसके लिए आप क्या देंगे? मैं नहीं समझता कि कुछ देने के लिए आपके पास में रह गया, देना था तो सभी कुछ दे दिया, अब बाकी को आप क्या देंगे? जो प्रेम आपसे करते हैं या करती हैं, ओ अब मैं समझा, तावत राग आ गया स्तेना। कृष्ण के प्रति जब तक की अनुराग नहीं है तभी तक घर कारागार, और राग मैंने आसक्ति, वस्तुओं के आपको आसक्ति, वो मोह है और उसी से कारागार में वो निबद्ध होगा। लोगों के प्रति कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं रही, लोभ है और प्रीति है किससे? पांच मिनट हरी कथा नहीं सुनेंगे क्या करेंगे? 9 बजे दुकान बंद हो, 9 बजे के बाद में यदि पूछो प्रसाद पाता से तो विश्राम करेंगे न हरी कथा, उसके लिए जो कि कुछ लाभदायक नहीं, उसके लिए तो उसमें खूब प्रीति है, उसमें अनुराग आ सकती है भगवान के, और भगवान की कथाओं में भगवान के नाम में तनिक भी अनुरक्ति नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए ही उनका वह जो राग आ सकती है संसार के प्रति, वो क्या है? मोह रूपी निगड़ है। निगड़ मैंने कैसा
हथकड़ी,
हाथ में पैरों में
बेड़ी,
बेड़ी हथकड़ों में हथकड़ी लगा दिया, और मर्डर करने वाले कैदियों को क्या किया जाता है? क्रॉस, और रड लगा देते हैं लोहे का, इस पैर से इस हथकड़ी यहाँ, और यहां से लेकर के इसमें से चल न सके, अधिक भग न जाए, इसीलिए वो मोह रूपी हम दिखाई नहीं पड़ती, किंतु हम समझते हैं कि लोहे की हथकड़ी बेड़ी कभी टूट जाएगी, मन की वृत्तियों को बदल नहीं सकती, बदल देगी नहीं, बदल सकती, किंतु ये जो आसक्ति है उसको पल पल में संसार की तरफ से आकृष्ट कर देता है। तो जिनको कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, कथाओं के प्रति, नाम के प्रति, तो उनके लिए ये मोह है, राग आदय स्तेना, चोर है। चोर कौन है? हमारे जितने बंधु बांधव शास्त्र में उनको चोर कहा, बाहर के लोग सुनेंगे तो हमको कहेंगे कि ऐसी कथा सुनाता है जिसे लोगों का संसार से मुंह खुल हो जाए, प्रीति ही नष्ट हो जाए, ऊपर से भले ही सुन लें किंतु भीतर से कोई 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 हम लोगों पर असंतुष्ट होते हैं, किंतु ये नहीं जानते हैं कि इन कथाओं के द्वारा ही हमारा जो था मनोबल होता है। वो चोर हैं, चोरी क्या करते हैं? चोर डकैत, बल्कि डकैतों से रक्षा हो सकती है, कह देंगे खुले पत्र में 5 तारीख को आएंगे और तुम्हारा सब लुटेंगे, तुम देख लेना, तैयार रहना, तो उसे हम तैयार हो जाएंगे, पुलिस में खबर देंगे, वहां से छोड़ करके भाग जाएंगे दूसरी जगह से, किंतु चोरों से कैसे बचेंगे? चोरों अपनी वृत्तियों को जाने नहीं देंगे, और कब आएंगे कैसे आएंगे कोई पता नहीं, इन चोरों से बचना। तो वो चोर कौन है जो कि हमारा सर्वस्व अपहरण कर लेते हैं अपना बनकर,
हमारे तृतीय आसक्ति को ग्रहण कर लेते हैं चोरी से, तो वो चोर है कारागृह बिना, और वो गृह ही कारागार है जिसमें हम आसक्त हैं, भगवान के प्रति जो आसक्त नहीं है। तावन मोह अंग्री निगड़ो जावत कृष्ण नहीं ले जाए। मैं तो यही जानता हूं जिन लोगों के कृष्ण ही अपने नहीं बन गए, उनके प्रीति के आस्पद नहीं बन गए, उनके आसक्ति के केंद्र बिंदु नहीं बन गए, उनके घर नहीं बन गए, बंधु नहीं बन गए, तो वो उन्हीं लोगों के लिए घर कारागार है। और उनकी राग इत्यादि वृत्तियां आसक्तियां ये मोह और अंगुली के समान है, इसलिए कृष्ण के प्रति ही ये आसक्ति होनी चाहिए, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझना चाहिए। प्रपंचम निष्प्रपंचो विडम व्यसूत प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रसिद्ध। हे प्रभु प्रपंचम निष्प्रपंच, आपका यह जो प्रपंच इस जगत में अवतरण है ये निर्गुण, इसमें प्रपंच नाम की ठग की नाम की कोई चीज नहीं है। आपका इस जगत में आविर्भाव ही जगत के कारण के लिए है। आप तो विडम्बयसि भूतले, आप इस बालक रूप में गोपाल बाल के रूप में विडम्बयसि भूतले माने क्या, आप ठग रहे हैं किनको, उन चोरों को जिनको घर में आसक्ति है, गृह में आसक्ति है और अपने आसक्ति में आसक्ति है उसकी पूरी करने में, धन जन पुत्र परिवार सब में आसक्ति है, उन लोगों को ठगने के लिए ये सब, ये थोड़े भगवान है, कृष्ण थोड़े भगवान है, अधिक से अधिक एक महापुरुष हो। वो कहते महापुरुष भी कैसे हों, भागवत में उनका जो चरित्र लिखा गया है वो कभी महाभागवत महापुरुष भी नहीं हो सकते, वो तो चोर जार सिखा बस यही तक लगता है, कुछ नहीं बन उनके लिए बेड़म्बे ऐसे पूतले, और उसी लीला के द्वारा अपने भक्तों को परमानंद देने वाले हैं। प्रपन्न जनता जो प्रपन्न जन है, जो प्रपन्न जन है अर्थात जो शरणागत जन है उनके लिए आनंद संदो, संदो माने खाना, खाना आनंद से यही बाल गोपाल है। हे प्रभु मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, जानंत ये वो जानंतु, जो जानते हैं आपकी महिमा कहते हैं कि मैं प्रभु की महिमा कुछ जानता हूं, वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं चार मस्तिष्क आठ आंख और ये सब मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति भी और आपके निकट आकर के आपके लीलाओं का देखने वाला भी मैं कुछ भी नहीं जान, मैं कुछ भी नहीं जान सका। जानते किंग भक्ता मैं न मैं प्रभो, मैं भी हे प्रभो आपकी महिमा को कुछ नहीं जान सका। मनसो बपुसो बाचो तव वैभव तव
अगोचरम,
आपकी महिमा वाणी वचन और मन इत्यादि के द्वारा अबांग मनसो गोचर है, केवल किन के लिए, प्रपन्न जन जन है उन्हीं के लिए केवल गोचर, उन भक्तों के लिए जो शरणागत हो चुके हैं विशेष करके ब्रजवासियों के जो अनुगत हो गए हैं उन लोगों के लिए अनुजाना मन कृष्ण सर्वतम वेद सर्व। प्रभु आप सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता, हमारी इच्छाओं को अभिलाषाओं को आप जानते हैं, मैं जितना नहीं जानता ये भी बात ठीक है, हम अपने को जो जितना नहीं जानते हैं, अपनी मन भावनाओं को नहीं जानते हैं, हमारा मन हमसे छल कर सकता है किंतु प्रभु को छल नहीं कर सकता, इसलिए सब कुछ जानने वाले प्रभु तमेव जगताम, आप ही जगत के नाथ हैं, आप हमारे भी नाथ हैं, जगत एतत् तवा, मैं सब कुछ अपना जो कुछ है जगत को भी आपके ऊपर अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर दिया, जगत भी आपके ऊपर पड़ने सभी कुछ अर्पित कर दिया। इस प्रकार की भावना लेकर के अंत में कृष्ण की प्रार्थना उन्होंने की, और कृष्ण हंसते हुए इनके तरफ देखा भी नहीं जो कौन ये स्तुति कर रहा हो कौन क्या कर रहा है, एक बच्चे के हाथ पर कंधे पर हाथ दिए हुए और ऐसे कमल घुमाते हुए उनके तरफ उपेक्षा कर, इनकी ये स्तुति इतनी बड़ी भी उनके कानों तक प्रवेश नहीं किया,
और ब्रह्मा जी अपने आप फिर अपने लोक पे चले गए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब आप कृपा कीजिए, सुखदेव गोस्वामी की कृपा, अब मैं चलूं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, आपकी कृपा, अब आप आदेश दीजिए, मैं अपने लोक को, बस यही प्रार्थना करके अपने लोक को चले गए। हम लोगों को इनमें से जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर, जो वैद्य भक्ति के हम लोग अधिकारी हैं, वैद्य भक्ति के लिए तो सर्वोत्तम रागानुगा भक्ति का भी सूत्र इसमें है, इसलिए हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, भगवान का भजन करें, संसार को संसार करें, संसार बुरा नहीं, किंतु संसार का तात्पर्य कृष्ण का संसार है, कृष्ण के लिए ही सब कुछ हो। बाजार करें किसके लिए? कृष्ण के लिए। नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय करें किसके लिए? भक्त और भगवान के लिए करें, तब तो ये निगड़ नहीं होगा, कारागृह नहीं होगा, और अन्यथा कारागृह के रूप में बदल जाएगा, और हमारा जीवन का ये जो सौभाग्य था हरिभजन करने का यदि चपट न हो जाए, इसलिए समर्पित करके ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को और फिर मन में धारण करके भक्ति करते हैं। कहते हैं नारद जी, मैं उस कथा को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, गुरु भी हैं, किंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो कौन किसका गुरु है? नारद जी तो इतने ऊपर वाले हैं जिसकी कल्पना भी नहीं। ये बैठ रहे हैं कहां, जहां पर नारद जी के लिए भी मन से बैठना भी बड़ा भारी असंभव है, गोलोक वृंदावन वहां द्वारका में बैठे हुए ये सब लीलाएं कह रहे हैं, मानो आज ही ये हो रही है, और उन कथाओं को ये प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए वहां का शिष्य और गुरु का संपर्क दूसरा है, वैदिक भक्ति में हम लोगों के यहाँ भी दूसरा है, अभी हम लोग इसी को पालन करके चले तो फिर वो सब सुयोग और सौभाग्य होगा, जो उस प्रकार से हम विचार करने में मंचा कल।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने बहुजन हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते सप्तकांचन गौरांगी राधे निंदामणिस्तरे विशुभांशि हा देवी काचे अंधर्विके तव गणे गणमन अंगश्याम छटाभिरक्तो मंदेत तेंदे वर्णे जट्यं जाजुगरूचि सांविदधतं पट्टं परस्य श्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदिरसद्दामातिरामोदरं राधाबन्धनिवेशितोऽजनकुलं नाम ृंदेन्मस्तेमराय राधिकाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्तायराग्युगभक्तिरसंप्रयत्न श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदानं ददाति यं प्रव्रजन्तमनुतेतमतेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का कर्या विभाव सूचे स्तम तैयार करो मिले कुछ भाव हम लोगों ने अनुशीलन साधक भक्त को भगवान के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, कैसे स्तुति करनी चाहिए, ये दिखलाया लोग पाठ करते और उसका साथ साथ में बनाया हुआ बंगला विवाद भी बड़े भाव के साथ में रात में पाठ करते और हरिनाम करते जाते थे तो ऐसे हो भाव यदि भूल हो ऐसी प्रार्थना को भी कृष्ण ने सुनी तो हम लोग बच्चा तो कतुर पतिता नाम पाओ सभी काम श्रद्धा के ऊपर मिलेगा। श्रद्धा यदि नहीं है तो बेकार की और श्रद्धा यदि है तो साथ। इसलिए ब्रह्मा जी ने इतनी प्रार्थना की यहाँ तक कि गोपियों की ब्रज के किसी भी व्यक्ति की चरण की धूली की भी प्रार्थना की तरफ में देखा नहीं बातचीत नहीं किया बड़े दूर से बोले जी अब आप आदेश दीजिए और मैं अपने लोग अभी उनका कर्तव्य ज्ञान है कर्तव्य में लगे हुए हैं क्या कर्तव्य है सृष्टि के कार्य और उसमें व्यवधान जो हो रहे हैं बीच बीच में उनके लिए उनकी बड़ी चिंता है घर परिवार बना लेना विवाह शादी बाल बच्चे हो जाएं बस काम हो गया अरे खिलाना है पिलाना है कोई रोग हो गया अस्वस्थ हो गया कोई समस्या पैदा हो गई उस सबके लिए सब समय सिर्फ दर्द बना रहा था तो ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करके ही निश्चिंत नहीं हो जाते सोचा जी सब समय यहीं पर प्रार्थना करेंगे और ब्रज में बने रहेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी तो ऐसे ही जिनका भी है संसार का दायित्व है ऐसा है और जिनको कुछ है ही नहीं फक्कड़ बन करके सब कुछ छोड़ करके कोई जगत का कर्तव्य ही नहीं है मान अपमान कुछ भी जरूरत नहीं है दिन रात उन्हीं की में लगे हुए हैं उन लोगों को क्या चिंता नारद जी को कहीं कर्तव्य के लिए कहीं जाना आना है उनको कहीं नहीं जाना ऐसे ही भगवान के भजन अकिंचन निष्किंचन होकर भगवान का यदि दोष करते थे तो वो सुन लेते किंतु अभी ब्रज का भाव उनमें आया नहीं इतनी स्तुतियां थी किंतु कोई भी एक श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें ऐश्वर्य भाव न ऐश्वर्य भाव की प्रधानता हे भूमन हे विभु हे ना हे संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ये सब और आपकी कृपा से ही आपको कोई जान सकता है प्रसाद लेशा अनुग्रहित एवही आपकी कृपा से अनुग्रहित होने पर भी आपको जान सकता है आपकी महिमा आपको जान सकता है अंत तक भी और सदवेश बनाने पर भी किसी ने कृष्ण ने धात्री उचित दी तो आप ब्रजवासियों को क्या देंगे कृष्ण ब्रज में लेने के लिए आए हैं कि देने के लिए आए हैं क्या देने के लिए और सब जगह जब आते हैं तो देने के लिए आते हैं यहाँ बड़े भूखे प्यासे होकर के आते हैं ब्रजवासियों का प्रेम पीने के लिए आते हैं यहाँ देना है कुछ नहीं और ब्रह्मा जी उनसे मांग रहे हैं आप कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए अंत तक करते हैं इसलिए ऐश्वर्य भाव से इनको कृष्ण के रूप में देखा, जगत स्रष्टा के रूप में देखा, उनके कारणों के कारण के रूप में देखा, निमित्त और उपादान दोनों कारणों के रूप में जगत का उनको देखा और ऐसे ही। इसलिए ऐसे कृष्ण ब्रज वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी को छेड़कर गोपियों को उसके सास और सासुरी की गाली सुनने के लिए छेड़खानी कर दी, उनके सामने ही उनकी लड़की या बहू के तरफ में देख लिया। और वो क्या करती है, गालियां देती है, दस गालियां सुनाती है, और कृष्ण और उसी को सुनने के लिए उनकी गालियां सुनना वेद की ऋचाओं की स्तव स्तुति से कोटि कोटि दिखलाया। किंतु इसमें साधारण लोगों के लिए, साधारण साधकों के लिए, वैदिक भक्तों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जी गोस्वामी ने कहा है ब्रह्मस्तुति बहुत गंभीर स्तर है, बहुत गंभीर स्तर। इसमें प्रवेश करना साधारण साधकों का काम है। इसलिए मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे ऊपर में कृपा करें, जिससे कि मैं उनके अंतर के भावों को जान करके व्याख्या में प्रकट करूं। भक्ति में बहुत सहायक। अब उस लीला को प्रणाम करके अब दूसरी लीला का प्रणाम। अब तक उनका उनकी जो लीला थी, अब तक कुमार लीला थी, अभी पौगंड में प्रवेश कर रहे हैं। कुमार लीला ही एक तरह से अभी तक चल रही है, अब उनकी पौगंड लीला चल रही है, अब आरंभ हो गई। कृष्ण जिद करने लगे कि मैया मैं बड़ा हो गया, अब मैं गैया चराऊंगा। एक दिन नंद बाबा ने देखा और देख एक कुछ सभा में कहने लगी, जब सब उनके भाई लोग एकत्रित हो गए अपने दोनों छोटे भैया को, सुनंद और नंदन, उनके दोनों छोटे भैया, उनसे कहा अच्छा क्या बात है जी, परसों से देख रहे हैं और कन्हैया हमसे बात की कितना नहीं करता है, हमको देख करके छिपता है, लजाता है, और सवेरे उठ करके दोनों भाई अपनी मैया को हमको प्रणाम करते हैं, पहले ये नहीं करते थे, अब ये प्रणाम करने लगे, बाहों में और पैरों में अब कुछ शक्ति आ गई, दस्तक्षर भी कुछ बस विस्तृत हो गया, ये बल सूचक, शरीर में कुछ कांति भी कुछ अपूर्व आ गई। अब हमसे बहुत कम बोलता, हमको देख करके थोड़ा सा कंधी काटता है, और तुम लोगों से तो बड़े प्रेम से बोलता है, तुम्हारी अंगुली पकड़ लेगा, और ऐसे जब भैया हो ऐसे तुम लोगों से बात, तो तुम्हारे लिए किस लिए जिद कर रहा था। तो वो दोनों भी कुछ लज्जित हो गए। कृष्ण के छोटे नंद बाबा के छोटे भैया है, छोटा भैया मैंने क्या, वो भी पुत्रवत होता है, बड़ा भाई पितृवत होता है, बड़े भाई को पितृवत सम्मान देना चाहिए, हमारी शास्त्र की रीति, बड़ी भाभी को माता के समान सम्मान करना चाहिए, उनका भी पैर छूना चाहिए, हमारे शास्त्र के अनुसार, और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई को सब समय पुत्रवत स्नेह करे। तो वो जिद कर रहा था, वो आपसे तार कर बोलता नहीं, अरे हमसे जिद कर रहा था, आप पिताजी से कह दीजिए कि अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं गैया चराने जाऊं। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता, अभी कुछ छोटा सा बच्चा है दूध, अभी नहीं, मैं कहा। और वो जिद, दोनों भाई हमको दोनों तरफ से अंगुली पकड़ करके आप दोनों तरफ से जिद कर रहे, और आपको देखा तो जब लज्जित होकर के फट गए, सड़क गए इधर उधर, यही बातें वो चाहते हैं। नंदन ने कहा मैं सबसे छोटे हैं भैया जी। अब हमारे समझ से बड़े दादा को पूछ लीजिए, बड़े दादा मन
कृपानंद
उनसे पूछ लीजिए। अब हमारे समझ से अब ये छोटा उतना नहीं रह गया है जैसा हम लोग समझते हैं। काम तो वही सब करता है, बच्चों को तो वही चराता है। अब मान लिया कि जो पांच चार पांच वर्ष की बछड़ियां हो गई हैं जिनको चरा रहा था और बछड़े, अब तो वो बड़े हो गए हैं और वो बच्चे दे रखा है, अब पहला बच्चा छोटा था, अब उसको बड़े गोप जितने हैं गायों में सम्मिलित करना चाहते हैं तो वो सम्मिलित नहीं होना चाहते, उनके साथ नहीं जाएगी नहीं, क्यों नहीं जा रही?
पहले से कृष्ण ने चराया,
कृष्ण ने उसको छोटेपन से जो चराया है,
लालन पालन किया, बड़ा
स्नेह किया है, उसके गले लग करके प्रेम किया है, इसलिए बछड़ा होने पर भी वो चाहे लाख मारते हुए चाहे जितना भी जो कुछ करें वो कृष्ण के जो बछड़े साथ में चलते हैं उसको छोटा होने। और इस तरह से ऐसी पहली बयान के करीब हजारों गायें हो गई हैं और कृष्ण उसको बचपन से स्नेह करते आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण का स्नेह नहीं भूलती। और दूसरा कोई जाता है तो दुहने नहीं देती, पैर से उलाट देती हैं हांड को दूध के, पैर मार देती है। और कृष्ण जाते हैं चुपचाप खड़ी हो जाती है, सुनने लगती है। कृष्ण पहले जैसा खबरी खबरी इत्यादि करते हैं, गले से लगा लेते हैं और बर्तन रख देते हैं, अपने आप दूध भर जाता है। ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो वो बछड़ियां और वो बछड़े जो बड़े हो गए हैं, अब उस पुराने दल में जिसको प्रौढ़ गोप लोग ले जा रहे हैं चराने के लिए, इनके साथ में हजार मारें जो कुछ भी करें जाते नहीं, तो वो कहते हैं कि आप तो जानते नहीं हैं, हम जानते हैं। और हम लोगों ने बहुत चेष्टा की, नंदन जी जाते हैं उनको लोगों के साथ में वृद्ध गोपों के साथ में चराने के लिए, इसलिए वो बछड़ियां उन्होंने हजार चेष्टा किया, मारा पीटा सब कुछ किया, वो जाती नहीं भगाती है, इधर गए इधर से लिया, उधर से तो उधर से उधर चली आती है। अब क्या करें, आज ही की बात है और दिनों में कृष्ण पहले बछड़ों को लेकर के चले जाए, नहीं गायों को लेकर के गोप लोग चले जाए, चले जाने के बाद में बछड़ों को लेकर के कृष्ण जाए। और कृष्ण पहले ही चरा करके 3 बजे वहां से चल देते हैं, 4 बजे तक घर में 5 बजे तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में बड़े दूर से चरा करके वृद्ध गोप लोग उन गायों को ले आते हैं। आज बात हुई उन लोग, वो लोग कुछ जल्दी चले आए और कृष्ण ने कुछ विलंब कृष्ण के भी जाने को, इसलिए दोनों साथ साथ में बछड़े बछड़ियां और उधर में बड़ी बड़ी जो प्रौढ़ा गायें हैं वो एक साथ में मिल गई। मिलने के बाद में कृष्ण के प्रति उनका ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ जो दूसरे दिन वृद्ध गायें भी हजार उन लोगों ने चेष्टा की नहीं गई, बस उनको खदेड़ करके ले जाते हैं और वो पीछे से घूम जाती हैं और कृष्ण की तरफ में मुख कर देती हैं, वो जाती ही नहीं, अब जाना मुश्किल है। अब वो जो है अब उनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या नहीं नहीं बढ़ेगा तो वो तो जाएंगे ही हम लोगों के साथ, तो अच्छा है कि कृष्ण के ऊपर नहीं छोड़ दिया। कृष्ण और बलदेव अब छोटे नहीं रहे, उनको कोई प्रश्न परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनको वंशी ध्वनि से उनको चारों तरफ से आकृष्ट कर लेते हैं। और जारो बच्चे हैं सब लड़के कितने लग वो सब लोग कर लेंगे, और हम लोग कहेंगे तो हम और भैया मैंने सुनंदर ये सब जितने हैं और भी लोग हैं, कुछ कुछ इनकी सहायता के लिए हम लोग भी रहेंगे
चाचा,
इसलिए कर। नंद जी ने यशोदा जी से पूछा,
वो तो राजी नहीं हो रहे। फिर शांडिल इत्यादि ऋषि को बुलाया, अंततः ऐसा कर दिया जाए, एक शुभ मुहूर्त तो कर ही दिया जाए। अंततः जैसा हुआ कृष्ण चराने जाए अथवा न, और हम लोगों का जातिगत पेशा यही है, और तो कुछ करना है नहीं, इसलिए शुभारंभ कर दिया जाए किसी अच्छे दिन में, और उसके बाद में देखा जाए। ठीक है, बुलाया गया उनको शुभ घड़ी में, दिन स्थिर किया गया। न हो भाव, न हो धूप, न हो अत्यंत ठंडा, ऐसा ऋतु कौन सा है? कार्तिक वर्षा का ताप मिट गया है, गर्मी का ताप मिट गया है वर्षा से, वर्षा विगत शरद ऋतु, अब शरद ऋतु आई। धूप में इतनी तेजी नहीं है, कम हो गई, कभी कभी बादल इत्यादि जो हो जाएगा, जाड़ा भी नहीं है खूब तीव्र और गर्मी भी नहीं है। और इसमें कार्तिक महीने में अष्टमी का दिन कौन, शुक्ला अष्टमी, और उसी को उपाष्टमी का, कृष्ण का जन्म कब हुआ था? किंतु उस समय रोहिणी नक्षत्र, और इसमें है रेवती नक्षत्र, महीने के कुछ तिथियों के वजह से ये तो अंतर है, किंतु
तीन दिन तक,
किंतु फिर भी अधिक गर्म अधिक शीत नहीं है, और इसी में ये ठीक उचित है। और यदि न किया जाए यह शुभ काम, तो गायों के चराने में व्यवधान हो जाए, वो नहीं चरेंगी इसके बिना, इसलिए हम समझते हैं कि शुभ का त्यौहार अच्छा, ऐसा सोच करके दिन स्थिर किया। जो शिवाजी ने गोपाष्टमी के दिन उनका बछड़ा चराना भी आरंभ किया, और ये भी किसी दिन में आरंभ किया, ये करते चले। यशोदा देवी ने गोप वेश उनको बनाया, हाथ में लठिया, वेणु, किसान, वस्त्र इत्यादि दे, और खाने के लिए कभी होता तो बांक पर रखकर, बांक माने कांवर पर बर रखकर, नौकर चाकर लोग या स्वयं उनके चाचा और आत्मीय स्वजन जहां वो दो पार में रहते तो वहां पर पहुंच जाते, या ये लोग भी कुछ कुछ ले लेते। और गायों को चराने के लिए जब जंगल में चले जाते तो भांगीर पर, बंशी पर और सब बड़ी बड़ी वृक्षों की छाया में उसको टांग देते और खेल तमाशा करते रहते, गायों को चराते रहते, और इसके बाद में दोपहर होता है, खेल से निवृत्त होकर के जमुना के किनारे छैया में बैठ करके सब खेल करते थे। इस तरह से ये एक दिन बलदेव के साथ में सब सखाओं को लेकर के चल रहे हैं, गायों को लेकर, अब गाय चराना आरंभ हो गया, लेकर के चले, चलते चलते वन में गए, वृंदावन में प्रवेश किया। वर्णन दिया है कैसे सुंदर सुंदर चारों तरफ में बेली चमेली कुंद और तरह के फूल सब खिले हुए, पेड़ों में लताएं में चारों तरफ फूलों से पुष्पित,